أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان عبادت ہی حیات ہے, اور جو آیت میں نے انتخاب کی اور جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا, سورہ زاریات کی 56 آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق ہی نہیں کیا جنوں انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. میں نے صرف جن اور انس کو خلق کیا میری عبادت کے لیے, یہ ترجمے ہوا کرتے ہیں, معروف آیت ہے. ہم نے گزشتہ دو مجالس میں یہ بتلایا کہ خلقت کی ابتدا مادی نہیں ہے, میٹیریل نہیں ہے. سب سے پہلے جو چیز خلق کی گئی حدیث کے مطابق جو ہم کو ائمہ کے سورس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل, جو چیز اللہ نے سب سے پہلے خلق کی وہ عقل تھی. اور عقل میں ہم نے بتلایا پہلی خلقت ہونے کے ناطے اس میں وہ خوبیاں رکھ دی گئیں جو اللہ میں موجود تھیں بدرجہ عتم. اللہ میں جو بے انتہا قدرت تھی, علم تھا, ارادہ تھا, اختیار تھا, سب کا سب ایک مقدار میں عقل کو دیا گیا, اور عقل پہلی خلقت بنی. اور اللہ نے اسے پھر آگے آنے کو کہا, پیچھے جانے کو کہا. اس نے یہ کام اپنی مرضی سے اطاعت کا مکمل کیا, یعنی اس میں قدرت کو اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت تھی, یعنی علم تھا. اس کو اپنے اختیار سے آگے اور پیچھے جانا تھا کیونکہ اللہ نے جبر نہیں کیا تھا, اور اس کے پاس وہ قدرت بھی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے اور پیچھے حکم کا پورا طریقے سے حکم کی پورے طریقے سے تکمیل کر سکے. یہ ہو گیا پہلا مرحلہ کہ یہ خصوصیت ہے. اور اس میں پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے کوئی بہتر چیز نہیں بنائی, اور میں تجھے تکمیل کروں گا ان میں جس سے میں محبت کرتا ہوں. کل کی گفتگو ہم نے بتلایا کہ فری ویل کا مسئلہ, اختیار کا مسئلہ, جبر و اختیار کا مسئلہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے جس سے فلاسفہ دوچار ہیں کہ ہم انسان کے اختیار کو کیسے سمجھیں. جو مادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات ہے, انسان مجموعہ ہے مختلف بائیو کیمیکل ریاکشنز کا, اور اس ہی ریاکشن کے نتیجے میں اس کا اختیار نظر آتا ہے. وہ اختیار اس کا نہیں ہے. اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے تو وہ ریاکشن سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے, پھر انہوں نے کچھ ہارمونز آئیڈینٹیفائی کیے اور ہارمونز کو سبب بنایا ایکشن کا. اور میں نے جگل اشارہ کیا, فرائیڈ کی طرف بھی اشارہ کیا, مارکسسٹ فلاسفرز کی طرف بھی اشارہ کیا, جو مادی ہیں یہ سب کہنے لگے کہ ہیومن فری ویل ایک دیکھنے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز ہے, حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک قسم کے جبر کے کہ جو دیکھا نہیں جا رہا ہے. ایک ایسی پش ہو رہی ہے کہ جو آپ محسوس نہیں کر سک رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے ہیں, اور اس کو اختیار اور آزادی کہہ رہے ہیں. انسان آزاد نہیں ہے, انسان آزاد نہیں ہے. وہ لوگ جو مادی نہیں ہے فلاسفہ, ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہوئی یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ یہ جو انسان بنا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے جس کے پاس 98% لگ بھگ ڈی این اے کامن ہے چمپینزی سے, اس کی یہ مادی خلقت میں کس طریقے سے ہم اختیار کو فٹ کریں. یعنی جو 98% کامنالٹی ہے ایک چمپینزی سے ہمارے ڈی این اے کے, کوئی چمپینزی کو فری ویل رکھنے والا نہیں کہتا, سبھی انسٹنکٹ سے کام ہوتا ہے. تو اب ہم یہ 2% چینج میں کس طریقے سے لے آئیں فری ویل کو, اور پھر مادے کو ہم کس طریقے سے یہ انٹرپریٹ کریں کہ ایک پوائنٹ کے بعد انسان میں وہ فری ویل آ گئی. اسلام کی روش بالکل ہی الگ ہے. یہاں سے بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, گریز کر رہا ہوں اپنی آج کی مجلس کی طرف. اسلام کہتا ہے کہ انسان کو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ذات انسان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, انہیرنٹلی انسان کو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی خلقت میں علم انبلٹ ہے, اس کی خلقت میں فری ویل انبلٹ ہے, اور فری ویل کے مطابق ایکٹ کرنے کی طاقت بھی اس میں انبلٹ ہے. یہ بنا ہی اس طریقے سے ہے کہ اگر اس کے وجود کو آپ جا کر تحلیل کریں گے, انالائز کریں گے, تو اس وجود میں سوائے یہ تین خوبیوں کے ابتداءً کچھ نظر نہیں آئے گا. جو کچھ آگے آئے گا ان کا ظہور مادی دنیا میں ہوگا. توجہ کا محتاج, ان کا ظہور, ان کا اظہار, ان کا اپلیکیشن دنیا میں, مادی دنیا میں آپ کو نظر آئے گا. ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کا علم, انسان کا فری ویل کا ہونا اختیار, اور انسان میں اس اختیار پر عمل کرنے کی قدرت رکھنا, اس ایک جملے میں آ چکا تھا اول ما خلق اللہ الاخر, اور اس کو آگے اور پیچھے میں یہ پورے کا پورا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں, جب آپ ان چیزوں کو انالائز کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں, چاہے وہ ریاضیات میں ہو, چاہے وہ فزکس میں ہو, چاہے وہ ہائر لیول کی کیمسٹری میں یا بایولوجی میں ہو, آپ کو امیجنیشن پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور امیجنیشن جہاں کام کرتا ہے وہیں سے نتائج نکلتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تحلیل کے لیے, انالائز کرنے کے لیے کوئی سامنے چیز نظر نہیں آتی, نہ اس کو مائکروسکوپ میں لایا جا سکتا ہے. آپ کو تھیوری کے ذریعے سے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. ماڈرن فزکس چاہے وہ ایسٹرانومی کے لیول کی ہو یا کوانٹم لیول کی ہو, اس کی گروتھ ہی ہیومن امیجنیشن سے ہوئی, انسانی ذاتی فکر سے ہوئی, انسانی تجربے سے نہیں ہوئی. انسانی تجربے سے نہیں ہوئی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی ہی سمجھا گیا, تھیوری کے طور پر ہی سمجھا گیا کہ سپیس بینڈ ہوتی ہے, جس طریقے سے ہم آپ سپیس دیکھتے ہیں, چاند سورج ہماری جو کائنات ہے اس میں سیدھی سپیس نہیں ہے, سپیس گریویٹی کی طرف سے بینڈ ہوتی ہے. تھیوری لکھ دی گئی, ایکویشن لکھ دیا گیا, پروف بعد میں آیا, پروف بعد میں آیا. جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہم کہتے ہیں, لگ بھگ 1916 میں آئنسٹائن نے اس کا فارمولا بنا چکا تھا, ایکویشن بنا چکا تھا, پروف نہیں ہوا تھا. پروف 1919 میں, 3 سال کے بعد, ایک سولار ایکلپس کو فالو کرنے کے نتیجے میں آیا کہ جو ٹائم لائٹ لیتی ہے وہاں سے یہاں آنے میں, وہ بینڈ ہوتی ہے اور اس حساب سے آتی ہے. سیدھا آتی تو اس ٹائم پر نہیں آتی, پہلے آ جاتی. جو کیلکولیشن اس نے کیا تھا وہ کیلکولیشن صحیح نکلا. یہ امیجنیشن ہے انسان کا, اور انسانی سیویلائزیشن پورے کا پورا امیجنیشن پہ آگے بڑھا ہے, پورے کا پورا امیجنیشن پہ. آپ نیوٹن کے پاس جائیے, نیوٹن کیا کرتا ہے, ایک سٹریٹ لائن موشن کا تصور ہے اس کے پاس. کوئی چیز اگر اس کو چھیڑا نہ جائے کوئی ایکسٹرنل فورس سے, تو وہ سیدھی لائن میں جانا چاہیے, اس کو سیدھی لائن میں جانا چاہیے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں, کائنات میں پلانٹس حرکت کر رہے ہیں سرکولر طریقے سے, اس کا خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان پر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ کر رہا ہے. یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کی قدرت کی دلیل پر پیش کرتے ہیں. न्यूटन तो 1642 का पैदा है, इमाम तो उससे लगभग 900 साल पहले पैदा हो गए। वो ये कहते हैं कि जब हम देखते हैं कायनात में सैयारों को कि इनका सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब है कि इन पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है और एक बराबर सी मकदार में एक्ट हो रहा है, एक प्रॉपर मकदार में एक्ट हो रहा है। अगर ना एक्ट होता तो हम कोई चीज कैलकुलेट ना कर पाते, ना हम सोलर एक्लिप्स कैलकुलेट कर पाते, ना लूनर एक्लिप्स कैलकुलेट कर पाते, ना हम चांद को कैलकुलेट कर पाते। ये सब जो मोशन हो रहा है सर्क्यूलर, ये एक्सटर्नल फोर्स विद अ मेजर्ड क्वांटिटी हो रहा है, और ये इंसान की बस की बात नहीं है, कोई मादी ताकत की बस की बात नहीं है, वो खालिक की बस की बात है जिसने इस पैटर्न में इनको बनाया है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये इमेजिनेशन है। सबसे बड़ी जो फिक्री इनकलाब का सबब बना खुसूसन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बाद, वो न्यूटन की फिक्र थी। आगे चलते चलते हम देखते हैं कि दूसरे लोग आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर काम हुआ फैराडे मैक्सवेल का, और उसके बाद लगभग ये 19वीं सदी के थे और 20वीं सदी की इब्तिदा में तकरीबन 1905 से लेकर 1916 तक हम आइंस्टाइन के फिक्र को देखते हैं, जहां के ऊपर उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये सब इमेजिनेशन है, सब इमेजिनेशन पर टिका हुआ है कि शक्ल से उसको समझा जाए। क्वांटम में आ जाइए, जहां पर आप बारीक से बारीक चीजों को देख रहे हैं, जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वहां पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा पॉल डिराक का, जो इक्वेशन ये प्रूफ करता है कि एंटी मैटर जैसी चीज, एंटी मैटर जैसी चीज मौजूद है। देखा किसी ने नहीं था, थियोरी बन गई, इक्वेशन लिख दिया गया। उसके दो तीन साल बाद एंटी मैटर को किसी ने बगैर इस इक्वेशन को समझे या देखे हुए उसको उसने प्रूफ कर दिया फिजिकल एग्जिस्टेंस को। एंटी मैटर का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज रखने वाला पार्टिकल, यह भी साबित हो गया। यह इमेजिनेशन की बात है। अगर आपको सिविलाइजेशन को देखना है और कल अपने सिविलाइजेशन को आगे निकालना है तो आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। जब तक इमेजिनेशन नहीं आएगा तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो सिलसिला हमको रसूल से मिलता है, वो आले रसूल से मिलता है, वो फायर कर देना है इमेजिनेशन को लोगों के। इस्लामी सिविलाइजेशन बना कैसा? हजार साल तक इस्लाम ने दुनिया को लीड कैसे किया? इमेजिनेशन को फायर किया, और इस तरीके से फायर किया कि जब इंसान अपने आप को कामिल तौर पर ताबे कर लेता है किसी आला फिक्र के, तो उसके जरिए से एक फिक्र निकलती है। ये काम अल्लाह ने अल्लाह वालों के जरिए से ज्यादातर करवाया, और जब अल्लाह वालों ने अपना काम करना छोड़ दिया तो गैर अल्लाह वालों से भी कराया कि ये देखो, तुम ना समझना कि हम तुम्हारे ही मोहताज रहेंगे, अगर तुम सुस्त पड़ जाओगे तो गैर को वो इल्म देंगे और वो तुम पर हुकूमत करेंगे, और वो तुम पर हुकूमत करेंगे। अल इल्म सुल्तान हदीस में मिलता है, इल्म हुकूमत करता है, इल्म सुल्तान है, इल्म इख्तदार रखता है। किस तरीके से? तुम नहीं करोगे दूसरों से करवाएंगे। अलबत्ता नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि दूसरों के पास जो खुदा के खौफ के जरिए से और तकवे के जरिए से इल्म हासिल न किए हो, तो वही होगा कि जो हमको नजर आता है। पता चल गया कि मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। 40 साल बाद हम देखते हैं 1905 से लेकर 1945 में अगस्त के महीने में हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब डाल दिया गया। वही थियरी जो 1905 में साबित हुई थी उसको इस्तेमाल करते हुए एटम बम बना और तबाही का सबब बना। और आज भी जो दुनिया हम आज आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल किनारे पर है तबाही के। जो दुनिया के न्यूक्लियर तबाही का मेजरमेंट है, वो बतलाते हैं कि 12 बजे उसको हो जाने का है, तो उससे एक आध मिनट पहले रुका हुआ है। आज तक कभी इतनी दुनिया न्यूक्लियर डिजास्टर के करीब नहीं थी जितनी आज है। क्यों? उन लोगों के हाथ में ताकत आ गई है कि जो अपनी दुनिया के लिए किसी को तबाह कर सकते हैं, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में हजारों लाखों की तादाद में लोगों को मारकर किया गया। एक बम डाला गया, पता चल गया क्या तबाही मचाया गया गई थी, तो हिरोशिमा के बाद 3 दिन के बाद फिर हमको मिलता है और एक मर्तबा डाला गया। ये किस बुनियाद पर डाला गया? कुरान कह रहा है कि तुम अगर एक इंसान की जान ले लो तो तमाम इंसानों की जान ले ली, और अगर तुम एक इंसान की जान बचा लो तो तमाम इंसानों की जान बचा ली। तो अब आप बताइए, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की गुंजाइश रह गई बाकी कि जो कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट, लड़ने वाले और नहीं लड़ने वाले, बच्चों बूढ़ों बीमारों में और तमामन ताकतवर फौजियों के दरमियान फर्क नहीं करता, इस्तेमाल की गुंजाइश है? जीरो। कोई आकिल नहीं कहेगा, लेकिन आप आज बतलाइए कि आज की दुनिया में ये इस्तेमाल के लिए तैयार है या नहीं है। हाल में रूस ने अपने एटमी हथियार बायलोरूस में डाले या नहीं रखे? अमेरिका अपनी स्टॉक पाइल को आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? दुनिया के और ममालिक जिसमें इसराइल और इंडिया भी शामिल है, हम अपने आप को आगे बढ़ा नहीं रहे क्या? नहीं। क्या हो रहा है? इंसान ने अपनी इब्तिदा को शुरू से नहीं समझा, नहीं जाना, और नतीजे में उसके यहां पर डिस्ट्रॉय करने की ताकत बढ़ती गई। अंबिया का काम यह था कि वो चीज की तरफ बुलाएं जो तुम्हें हयात देती है। या अय्युह लजीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, ईमान तो तुम ला लिए हो, रसूल और अल्लाह को तो मान लिए हो, लेकिन जब अल्लाह और रसूल तुम्हें बुलाते हैं उस चीज की तरफ जो तुम्हें हयात बख्शती है, तो तुम लब्बैक कह देना, तुम लब्बैक कह देना। यानी अल्लाह और रसूल बुला किसकी तरफ रहे हैं? हयात की तरफ या मौत की तरफ? हयात की तरफ। कुरान की आयत, जवाब दो अल्लाह और उसके रसूल को पॉजिटिवली जब वो तुम्हें बुलाते हैं, जब रसूल अल्लाह का बुलाता है तुम्हें उस चीज की तरफ जो तुम्हें हयात बख्शती है। लकुम फिल खिसास हयातुन या उलिल अलबाब। ऐ उलिल अलबाब, ऐ अक्ल रखने वालों, ऐ दिमाग रखने वालों, ऐ फिक्र रखने वालों, अगर तुम खिसास नहीं करोगे, यानी जालिम को उसकी सजा जैसे जुल्म किया है वैसी नहीं दोगे, अगर कत्ल किया है तो कत्ल की सजा कत्ल नहीं रखोगे, तो याद रखो तुम हयात से हाथ धो लोगे, मारने वाले बच जाएंगे, जालिम बच जाएंगे, मजलूम बढ़ जाएंगे। तो तुम्हारे लिए किसास के जरिए से, रेट्रीब्यूशन के जरिए से अल्लाह ने हयात रखी है ताकि मजलूम को मारने वाला जालिम उसको बख्शा ना जाए, ताकि और मजलूम ना बन सके लोग। आज हमारी दुनिया देख लीजिए क्या हो रहा है। फूल पहनाए जा रहे हैं वो लोगों को कि जो किसी एक खानदान के 11 अफराद को पकड़ते हैं, उनमें से 7 मर्दों को मार डालते हैं, एक 3 साल की बच्ची को पैरों से पकड़कर दीवार पर सर मारकर मां के सामने मार देते हैं, उस औरत की मां और बहन के साथ बदफेली करते हैं, उसके साथ बदफेली करते हैं, सबको मार देते हैं, तसव्वुर करते हुए चले जाते हैं कि सब मर गए हैं। ये बिलकिसबानों को अल्लाह बाकी रखता है। आज वो इस काबिल हो जाती है कि कोर्ट में जाकर साबित करे कि मेरे साथ, मेरे खानदान के साथ क्या हुआ। जब सजा मिलती है तो कुछ छोटी सी सजा, 14 साल की सजा, और उसके बाद लाइफ इंप्रिजनमेंट को छूट के नाम पर छोड़ दिया जाता है और फूल पहनाए जाते हैं। अगर हम जुल्म के खिलाफ ना बोलें तो इमाम हुसैन को भुला चुके हैं, हम इमाम हुसैन को भुला चुके हैं। ये हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम हक रखते हैं कि हम अपनी आवाज कम से कम बुलंद करें कि जुल्म हो रहा है न फकत मुसलमानों पर, इंसानों पर। अल्लाह ने कहा एक इंसान की जान अगर तुम ले लिए तो तमाम इंसानों को, इंसानियत को तुमने मार डाला। मुसलमान की जान नहीं कहा, मुसलमान की जान नहीं कहा, कहा एक इंसान की, नफसन। हम किस जमाने में बैठे हैं? मेरे मौजू से यह बात इसलिए जुड़ती है कि अगर हम एहसास न करें कि अल्लाह ने हमें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क किया है तभी हम जुल्म से बचेंगे, वरना हमको अगर एहसास हो जाए कि अल्लाह ने हमको यूं ही बना दिया, कोई खास मकसद न था, या नमाज जैसी कोई इबादत करने के लिए कुछ 15 मिनट 20 मिनट दिन तमाम और उसके बाद बाकी जो चाहे कर लो इसलिए बना दिया गया है। 15-20 मिनट नमाज पढ़ लो दिन में, महीने के रोजे रख लो साल में, कुछ 2.5% के लगभग जकात दे दो और उसके बाद हज को जिंदगी में अगर इस्तेतात हो तो चले जाओ, बस। ये दीन का इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे कि हमारा डिजाइन जनरल हुआ है, पर्टिकुलर नहीं हुआ है, फकत और फकत इबादत के लिए नहीं हुआ है, तो हमारे एहसासात, हमारी सेंसिबिलिटीज पूरी की पूरी बेकार हो जाएंगी, हमारी हसासियत खत्म हो जाएगी। हसासियत को जिंदा रखना है अल्लाह के लिए, हसासियत को जिंदा रखना है उसकी इबादत के जरिए से, हसासियत को बाकी रखना है उसकी इबादत के जरिए से। इसलिए उस अक्ल को इंसानी कालिब में, इंसानी रूह की शक्ल में, जो खुदा अपनी रूह कहता है, वह नफख तो फी है मिर रूही, हमें वो इब्तदाई अक्ल जो अल्लाह की रूह से ताबीर हो रही है हमको मिलती है। अब देखना यह है कि यह जो इंसान दुनिया में आया है इस खास मकसद के लिए, वो इबादत के लिए डिजाइन हुआ है, अब वो क्या करता है? सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया में भेजा गया, जानते हुए भेजा गया, अल्लाह का इकबाल करवा कर भेजा गया, जैसा कि मैंने भी इशारा किया था पहली मजलिस में, अलस्तु बि रब्बिकुम कालू बला शहिदना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो वो रूह जो बदन से अब नजदीक हुई है, बदन के करीब आ रही है, उसमें रूह फूकी जा रही है, उससे पूछा जा रहा है कि क्या मैं तेरा रब नहीं हूं, सस्टेन करने वाला नहीं हूं? क्योंकि अब जब दुनिया में जाएगा तो अब जो तुझे डायरेक्टली सस्टेन करेगा वो मैं नहीं रहूंगा, मेरा मादा रहेगा, तुझे मां के पेट में रहम की शक्ल में खाना मिलता रहेगा, निकलेगा बाहर तो दूध के जरिए से मिलता रहेगा, और आगे बढ़ता जाएगा और सलाहियत होगी, तुझे मैं दांत देना शुरू करूंगा 5वें 6वें महीने के बाद ताकि कुछ चाप सके, ये सब मैं करता रहूंगा वास्तों से। जब तक वास्ते नहीं थे तूने फौरन गवाही दी, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? क्योंकि पता था अकल को कि मैं हयात रखती हूं, इल्म रखती हूं, इख्तियार रखती हूं, इख्तदार रखती हूं, ये सब का सब एक ही सोर्स था, अल्लाह था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। झट से जवाब दिया कि सिवाय तेरे कोई है नहीं, तो तू ही सस्टेन कर रहा है। जैसे आए दुनिया में और मादी चीजों से सस्टेनेंस स्टार्ट हुई, अब लगा कि वो खुदा ही कहां है, ये असबाब है, मुसब्बिबुल अजबाब को भूल गए, जो हकीकी फाइल था जिसने रूह को दिया और मादे को रूह कबूल करने के काबिल बनाया और उसके बाद सफर इंसानी शुरू हुआ। बउनवाने इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, बेशक मैं अपना खलीफा इस दुनिया में करार दे रहा हूं। इंसान आ गया, नुमाइंदा बनकर आ गया और अल्लाह के इल्म को अब इस्तेमाल करना, अल्लाह के इख्तियार को इस्तेमाल करना, अल्लाह के इरादे को इख्तियार करना, अल्लाह की कुदरत को सही जगह पर लगाना, ये जिम्मेदारियों के साथ उसे नुमाइंदा बनाया गया जो पहले अकल से देख लिया गया था। तो सप्लाई पूरी हो गई, अब खाली यह है कि डिजाइन क्या है। डिजाइन भी वही है कि फकत और फकत इबादत के लिए बनाया गया है। अगर ये चार चीजें इल्म, इख्तियार, इरादा, इख्तियार और इरादे को एक और कुदरत, ये अगर अल्लाह के रास्ते में सर्फ ना हो रही हो तो इंसान सिवाय खून बहाने के और फसाद करने के कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो फरिश्तों ने कहा था, क्या तू ऐसे को करार दे रहा है कि जो वहां पर फसाद करेगा और खून बहाएगा, यफ्सिदू फीहा व यफ्सिकुद दिमा, क्या करेगा तू ऐसे को भेज रहा है? इसलिए कि नहीं, जो मेरे दायरे इबादत में आ जाएगा, जिसको पता है, अक्ल ऐसी है कि अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर उसको काम में ना लाऊं, इल्म ऐसा है कि अगर उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम में ना लाऊं तवज्जो का मोहताज हूं, इख्तियार ऐसा है कि अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर काम में ना लाऊं, इरादा ऐसा है कि अगर मैं अलावा अल्लाह के कोई इरादा कर लूं जो अल्लाह की मुखालफत में हो, और कुदरत जो बदनी है, ताकत जो बदनी है, अगर वो मैं अल्लाह की मर्जी के हिसाब से अमल में न लाऊंगा तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं जुल्म की तरफ चला जाऊंगा। और जुल्म के बचने का एक ही रास्ता है, इन पूरी ताकतों को, खूबियों को, कुदरतों को, इल्म को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करूं। इस इस्तेमाल का नाम इबादत है। इबादत खुसूसी में उसको महदूद करना बेमाना है। इबादत खुसूसी में उसको महदूद करना बेमाना है, इसलिए कि वो इबादत करते हुए भी लोग जुल्म करते रहे, तारीख भरी हुई है। और उसी किस्म की इबादत को कि जिसके अंदर रूह ना हो, उसको अल्लाह ने कुरान में लानत भी की है, वैलुल्लिल मुसल्लीन कहा है, नमाज पढ़ने वालों पर लानत हो। मालिक क्यों कह रहा है? कहा कि वो लोग अपनी नमाज से गाफिल हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं दिखावे के लिए। और एक सूरे में मिलता है कि ये खड़े नहीं होते नमाज के लिए मगर सुस्ती में और दिखावे के लिए, ये एक जगह, दूसरी जगह पर। तो पता चला कि लोग अल्लाह से मुतवज्जे न होते हुए अल्लाह के लिए न होने के लिए भी नमाज पढ़ते हैं ताकि लोग उनको नमाजी समझे, लेकिन काम जब करते हैं तो वो नमाजियों वाला काम नहीं करते, शैतान वाला काम करते हैं। क्योंकि शैतान भी, इबलीस भी एक शक्ल का नमाजी था जिसकी अना बेकाबू हो चुकी थी, जो खुदा के अलावा खैर टटोल, खैर देखने लगा था। इसलिए जब आदम को सामने रखा गया, कहा कि मैं उससे आला हूं, जात पर नजर रख ली, अल्लाह से नजर हटाई, काम खत्म हो गया, शैतान हो गया, इबलीस को बारगाहे इलाही से हटा दिया गया। आदम के साथ क्या हुआ? अल्लाह से नजर इबलीस ने हटवाया, ये कहकर के तुमको यहां इस शजर के नजदीक जाने से, इस दरख्त के करीब होने से वो जिंदगी मिल जाएगी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो जावेदान जिंदगी मिल जाएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। नजर हटी अल्लाह से, जिंदगी के दवाम की तरफ ख्वाहिश बढ़ी, धोखा हुआ, शैतान की बात अच्छी नजर आने लगी और शैतान की बात पर अमल किया और अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाल दिया। नजर हटना है अल्लाह से और अल्लाह के अलावा खैर का तलब करना, आप बोलेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अमल कर कर देखें बड़ी बात है या छोटी बात है। अल्लाह की तरफ से नजर हटना ही नहीं है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम दाइमून, मोमिनीन की सिफत बयान हो रही है कुरान में। एक कि वो हिफाजत करते हैं अपनी नमाज की, यानी नमाज की हिफाजत का मतलब नमाज अपना पूरा असर हमारी रूह पर छोड़े, ये हिफाजत नमाज है। पूरा असर हमारी रूह पर छोड़े, यानी नमाज के बाद हम अल्लाह की तरफ देखकर कहें मालिक अब बोल क्या करूं, और अल्लाह कहे कि सर कटा दो तो सर कटा दे, बच्चों का सर पहले कटाओ तो बच्चों को आगे कर दे। ये नमाज का असर है। लोग कहते रहे कि ये इतना बड़ा पहलवान है कि ये तो 100 आदमी को यूं ही खत्म कर देता है, इसके साथ जंग करना मौत को दावत देना है, मरने के बराबर है। अली बार बार खड़े होते नजर आते हैं रसूल के कहने पर, कोई भी हो मुझे अल्लाह के लिए जाना था। अली ने अपनी ताकत की बुनियाद पर हरकत नहीं की, वल्लाह महाल था कि अली अपनी ताकत पर हरकत करें। अली ने अल्लाह की ताकत के ऊपर तकिया कर हरकत किया, चाहे वो जंगे ओहद हो, चाहे वो खैबर का दर उखाड़ना क्यों ना हो। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो अपनी ताकत समझता है अल्लाह से दूर होता है, जो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना कोई ताकत ना कोई कुदरत है सिवाय अल्लाह की कुदरत और ताकत के, उसको अल्लाह उठाता है। और अली अली होते हैं, अली का मतलब बुलंदी। और क्या बुलंदी मिलती है, क्या बुलंदी मिलती है रसूल और आले रसूल को, क्यों कि अल्लाह के अलावा कुछ नहीं चाहते। मा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, वो चाहते नहीं, कुरान की आयत, तुम चाहते नहीं हो मगर वो के जो अल्लाह चाहता है। जब अल्लाह चाहता है वही चाहते हैं, तो फिर अल्लाह कहता है जो तुम करते हो वो मैं कर रहा हूं। जब बैत के लिए रसूल का हाथ आगे जाता है और रसूल का हाथ मोमिनीन जो बैत कर रहे हैं उनके ऊपर रहता है, तो वो यदुल्लाह फौका यदीहिम हो जाता है, अल्लाह का हाथ हो जाता, जबकि वो अल्लाह का हाथ नहीं था, रसूल का हाथ था। निस्बत अल्लाह अपनी तरफ देता है, रसूल तुमने अपनी बुलंदी को अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए ये हाथ ऊपर नहीं रखा है, अल्लाह की ताकत जाहिर करने के लिए हाथ ऊपर रखा है, इसलिए कह रहा हूं। और इसकी दलील भी फराहम करूंगा उसी कुरान में कि जब मैं कहूंगा है रसूल अपने खांदों को झुका देना उनके लिए जो तुम्हारी इत्तेबा करते हैं मोमिनीन में से, दो आयतें, फक्फ जनाह का लिल मोमिनीन, फक्फ जनाह का मतलब मन इत्तेबा का मिनल मोमिनीन, है रसूल वो मोमिनीन जो तुम्हारी इत्तेबा करते हैं, एक तो जनरल है उस जनरल का माना, और एक आयत आके तख्सीस करती है, मखसूस करती है कि ये आम मोमिनीन मुराद नहीं है रसूल के सबके सामने तुम खांदे झुका दो, ये खास मोमिनीन है। कौन है उनकी शिनाख्त, ये है कि ये तुम्हारी बात सुनते हैं, और क्यों सुनते हैं, तुम्हें मेरा रसूल समझ के सुनते हैं, मेरे से मोहब्बत करके तुम्हारी बात सुनते हैं। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबेउनी, कल मैंने इशारा किया था, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम है मोमिनीन अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर रसूल की बात सुनो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अब जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है और गुनाहों को बख्शने लगता है तो रसूल के जरिए से उसकी सनद फराहम करता है, कहता है रसूल खांदे झुका दो इन मोमिनीन के सामने जो तुम्हारी इत्तेबा करते हैं। अली को जैसे हाथ ऊपर रखने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, वैसी खांदे झुकाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं था। अगर अपने गुरूर और अपने तकब्बुर के लिए हाथ रखते तो मोमिनीन के सामने अपने खांदों को झुकाना मुश्किल दिखता, न वो बुलंदी न ये कसर, सब अल्लाह के लिए हो रहा है। तो अगर जंग जीत भी रहे हैं तो अल्लाह के लिए, और शहीद भी हो रहे हैं तो अल्लाह के लिए, ये खूबी होती है अल्लाह वाले होने की। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह اللہ کے ہو جانا، اللہ کے ہو جانا، اللہ کے ہو جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ. مثال دے رہا ہوں، انسان کے پیر بنے ہیں انسان کے چلنے کے لیے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے چلنے کے لیے، اور ہم آپ چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آنکھیں ڈیزائن کی گئی ہیں دیکھنے کے لیے، روشنی کچھ ہو تو آنکھیں دیکھ لیں گی. پیر زمین پہ چڑھ لیں گے، پہاڑ چڑھ لیں گے، طاقت جتنی آپ کی ہے، صلاحیت جتنی آپ کی ہے، سینو سال کے مطابق. تو ڈیزائن کو سمجھ لینا چاہیے، کبھی پیر ٹھوکر کھا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں. چلنے کے نتیجے میں جو چلتا نہیں تھا وہ گرتا بھی نہیں تھا، ٹھوکر بھی نہ لگتی. مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پیروں کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹھوکر کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہم گاڑی ڈیزائن کرتے ہیں، گاڑی موٹر سائیکل ٹکر ہو سکتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ گاڑی کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹکر مارنے کے لیے. ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، جہاں حرکت ہے اور اس کا یوٹیلائزیشن ہے وہاں وہاں کبھی کبھی غلط ہو بھی جا سکتا ہے. تو انسان ڈیزائن کیا گیا ہے عبادت کے لیے، انسان ڈیزائن کیا گیا ہے عبادت کے لیے. غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہونے پر غلطی کس کی ہو رہی ہے؟ رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں ہوئی نا غلطی. تو کہتا ہے کہ میں توابین کو قبول کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں توابین سے، جو ٹکر کے بعد ٹکر نہیں مارتے، ٹھوکر کے بعد ٹھوکر نہیں کھاتے. دنیا میں ٹھوکر لگے گی، دنیا میں ٹکر لگے گی تو تکلیف ہوگی، تو دوبارہ نہ کریں بول کر سوچ لیں گے. لیکن اللہ کی عبادت سے دور ہو کر دنیاوی لذات میں گم جانا اور ان سے متلذذ ہونا، ان کو انجوائے کرنا، اور یہ احساس نہ کرنا کہ یہ انجوائمنٹ میرے خدا کو پسند نہیں آ رہا ہے، اب اس کی رحمت ڈھونڈ رہے ہیں، کب؟ جان کر کر غلطی کرنے کے نتیجے میں. خدا ایک ہی بات کہتا ہے، تم سہون غلطی کرو، توبہ کر لو، میں مان لوں گا. مجھے چیلنج کر کر غلطی نہ کرنا. بار بار کرنے کا مطلب چیلنج ہو جائے گا، بار بار کرنے کا مطلب چیلنج ہو جائے گا. کہیں پر اگر ہم کام کر رہے ہوں اور وہاں پر ہم کو بولا جائے کہ بھئی ایک غلطی کر دی تو بھئی معاف کرنا، آپ کو ایک لیٹر لکھ دیا آپ نے، پھر پتا چلا ایک 10-15 دن کے بعد پھر وہی غلطی کی، پھر ایک لیٹر لکھ دیا آپ نے، کب تک آپ کو قبول کیا جائے گا اور کب نوکری لے لی جائے گی؟ تماشا ہو جائے گا نا. جو مینیجر کو یا آپ مینیجر ہو تو اس کے اوپر والے کو لکھ رہے ہیں، ہر 15 دن کو ایک معافی نامہ آتا جا رہا ہے، اور اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جان کر کے غلطی کر رہے ہیں، اور اللہ سے بہتر جاننے والا کون؟ انہ یعلم السر و اخفا، قرآن کی آیت ہے، وہ تو چھپی ہوئی سیکرٹ چیزوں کو جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، جو سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے وہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت میں، وہ نیت آنے سے پہلے تمہاری نیت کو ناپ لیتا ہے. وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس کو مولا فرماتے ہیں نجل بلاغا میں کہ یہ جب بناتا ہے تو اس کو فکر کو اپنی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو کوئی چیز بناتے ہیں، چاہے وہ کوئی نقشہ کیوں نہ ہو، ہم کو اپنی عقل کو کام میں لانا پڑتا ہے، ہم کو دماغ لگانا پڑتا ہے. اللہ کی خلقت ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کی خلقت میں کرتے وقت کوئی اس میں چینج نہیں آتا، اور وہ ایکسپیرینس اور تجربے کے ذریعے سے خلق نہیں کرتا. اللہ کی خلقت میں ہم کوئی چیز بناتے ہیں، معمولی سی چیز، ڈرائنگ کرتے ہوں گے، نقشہ بناتے ہوں گے، لیکن اللہ جو بناتا ہے بغیر حرکت کے بناتا ہے، بغیر تجربے، اس کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے، ہم تجربے سے سیکھتے ہیں، تو اس لیے چھوٹ دیتا ہے. غلطی میں بھی تم کو میں چھوٹ دے دوں گا، کیونکہ تمہارا علم ویسا نہیں ہے جیسا میرا علم ہے، میرے پاس بخشنے کی طاقت زیادہ ہے. اے نفس جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم تیرے تمام گناہ بخش دیں گے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم میرا ہو کے بتا دے، شرط یہ ہے کہ تم میرا ہو کے بتا دے، یہ بتلا دے کہ اب جو کر رہا ہوں اب نہیں کروں گا. شیطان کو بھی موقع دیا گیا ہے قرآن میں، کیا کر رہا ہے تو؟ کیا اپنے آپ کو سچ مچ بڑا سمجھ رہا ہے یا تو کوئی پوز دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، होता है ना, कोई आदमी बड़ा महसूस नहीं करता लेकिन महसूस करवाता है कि मैं बड़ा हूं, खुद अंदर से महसूस नहीं करता लेकिन दिखावे के लिए आदम के सामने मुझे छोटा होना नहीं है, अल्लाह के सामने बड़ा होना नहीं है, नहीं आदम के सामने छोटा नहीं है तो अल्लाह के सामने पोज कर रहा है। अल्लाह पूछता है कि तू कहीं जबरदस्ती इस्तेला तो नहीं कर रहा है, अपने आप को बुलंद दिखाना तो नहीं चाह रहा है, या सचमुच अपने आप को बड़ा समझता है मेरे हुक्म के मुकाबले में। अगर बोलता कि नहीं नहीं तेरा हुक्म बड़ा है, मैं थोड़ा अकड़ में आ गया था, बख्शा जाता। लेकिन नहीं, हमारा भी यही प्रॉब्लम है, फिरौनों का भी यही प्रॉब्लम है, आज की दुनिया का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जितना जितना मादी वसायल हमको मिलते जा रहे हैं, मेटीरियलिस्टिक चीजें हमको नसीब होती जा रही हैं, हम ये टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं बिल्कुल उस बच्चे की तरीके से कि जिसको खिलौने दिए जाते हैं। कभी भी खिलौना लेकर बच्चा शुक्रिया बोलेगा जरूरी नहीं है, आदत दिलाई जाए तो शायद शुक्रिया बोले। रसूलों को आदत दिलाने के लिए भेजा गया था, सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए रसूल जरूरी हो जाते हैं कि खुद बुराई करते नहीं हैं, बुराई करने से पहले अपने आप में इतनी एहतियात बरतते हैं कि बुराई का तसव्वुर हिला देता है, बुराई का तसव्वुर। यह मेराज है इंसानियत की, यह इंसानियत की मेराज है। किसी को यूं ही नहीं कहा जाता, रहमतुल्लिल आलमीन है, अगर किसी से जर्रा बराबर भी रहमत की कमी का इम्कान हो, अल्लाह कभी ना कहता हमने तुम्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, वह मारसल्ला का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। उसका मतलब यह है कि रसूल इतनी भी रहमत की कमी का सबब नहीं बन सकते। इसलिए कहा अजीजुन अलैहिमा अनितुम, तुमको बड़ी तकलीफ होती है जो मोमिनीन को तकलीफ होती है, हरीसुन अलैहिम व बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, तुम मोमिनीन पर रऊफ और रहीम हो, तो रब का क्या हाल जिसने इनको रहमत बना के भेजा है, जिसने इनको रहमत बना के भेजा, जर्रा बराबर भी रहमत की कमी की गुंजाइश नहीं है। और वही चीज हम आलमे भी देखते हैं, वही कैफियत से कुरान रसूल पर नाजिल हुआ, वही कैफियत से रसूल ने पहुंचाया। कुरान की आयत है कि हमने हक की बुनियाद पर उसको नाजिल किया और हक की बुनियाद पर वो नाजिल भी हुआ, पहुंचा दिया गया। अब सवाल यह है कि ताकियामत इसको बाकी रखा जाए, और अमली मॉडल जो रसूल के जमाने में था वो अमली मॉडल बाकी रखा जाए, क्योंकि किताब एक अमल नहीं कर सकती, दूसरे उसका इंटरप्रिटेशन किसी शक्ल से भी हो सकता है, तीसरे इखलास की हिफाजत जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं और अमल कर रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। बादशाहों की रविश कुरान की रविश बन जाने का एहतमाल था, और हम आज समझ सकते हैं तो अल्लाह पहले नहीं समझ सकता। इसलिए जरूरत के तौर पर इमामत को रखा गया कि अगर दीन रसूलों से भेजा जाएगा हिफाजत इमामों से करवाई जाएगी, और जिन्होंने इमामत को इजी लिया कबूल करने में या कबूल कर इजी लिया, हम लोग दो तरीके हैं, मानो ही मत अल्लाह के तरफ से है या मान लो। अरे जब अल्लाह को इजी ले सकते हैं तो रसूल को इजी लेंगे, जब रसूल को इजी लेंगे तो कुरान को इजी लेंगे, जब कुरान को इजी लेंगे तो फिर अहले बैत को भी इजी लेंगे, ये सब इजी लेंगे, तो फिर सीरियस क्या लेंगे, तो बोले दुनिया को हम सीरियस लेंगे। तो पता चला कि दुनिया की डगर पर, दुनिया की राह पर तेज तेज चले जा रहे हैं, और कभी अल्लाह को हाय हेलो कर दिया, कभी रसूल को हाय हेलो कर दिया, कभी कुरान खोलकर बैठ गए हाय हेलो कर दिया, कभी अहले बैत को हाय हेलो कर दिया, आकर मुहर्रम बन क्या गया, एक सीजनल तस्करा, एक जमाने में होता है और फिर भुला दिया जाता है, जिंदगियों पर उसका असर मिनिमल होता जा रहा है। उसमें जो गीत के सुर लाकर नौहे पढ़ रहे हैं उनकी अहमियत को बढ़ाया जा रहा है। मिंबर से जो झूठ को राइज कर रहे हैं उनको अहमियत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? हमको सच से क्या लगाओ, हमें सच से क्या लेना है? हमें तो हर चीज जो दिल को भाए वो कबूल करना है। तो शैतान कहता है तो वही तो चीजें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कभी दीन के अंदर दिल को भाने।